Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। कल परम सद्गुरु के संबंध पे हमारी चर्चा हो रही थी कि कैसे परमात्मा से परम सद्गुरु का संबंध जोड़ा जाए, और ये भी बात हो रही थी कि जहाँ गुरु और शिष्य की बात आती है वहाँ समर्पणता का बड़ा ही अहम रोल है, भूमिका है, क्योंकि जब तक आप समर्पित नहीं होते हैं तब तक गुरु कैसे आपको निर्मित करेंगे। जैसे रास्ते पे पड़ी हुई मिट्टी जिसे लोग रौंदते रहते हैं, जब वो एक कुंभकार को समर्पित हो जाती है तो एक सुंदर घड़ी का निर्माण हो जाता है। कोई बेढब सा पत्थर जो सड़क पे पड़ा हुआ है, जिसका कोई मोल नहीं है, जब वो किसी मूर्तिकार को समर्पित हो जाता है तो बहुत ही सुंदर मूर्ति का निर्माण हो जाता है। तो ये समर्पणता ही है जो जीवन का निर्माण करता है, और इसीलिए शायद परम सद्गुरु को भी ये समर्पण भाव बहुत पसंद है। मुझे एक कहानी याद आ रही है, छोटी सी बड़ी प्रेरक सी है। एक चोर चोरी करने के लिए निकला, देखा उसने कहीं भी उसे कुछ नहीं मिला। सभी लोग कहीं जाग रहे थे, कहीं ताला बहुत बड़ा सा लगा हुआ था, कहीं कुछ था, कहीं कुछ था, उसकी कोई कमाई नहीं हुई। बेचारा निराश होके लौट रहा था। अब प्रातः काल की वेला थी, अमृत वेला जिसको कहते हैं, सुबह का प्रहर था। निराश होके लौट रहा था, अचानक शिवालय पे उसकी नजर गई। देखा शिवलिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा सा सोने का घंटा लटक रहा है। अब चोर को लगा कि आज कुछ कमाई तो हुई नहीं है, चलते हैं आज इस मंदिर का ये सोने का जो बड़ा सा घंटा है इसे ही उतार के ले चलते हैं, और वैसे भी अपने पिताजी का ही मंदिर है, इनके किसी काम का तो है नहीं, ये मेरे काम का है। चोर अंदर प्रवेश कर गया। अब वहां तक पहुंचने के लिए, उस घंटे तक पहुंचने के लिए कोई कुछ चीज थी नहीं, वहां सीढ़ी भी नहीं थी। अब किसी भी वक्त पुजारी भी आ सकते थे क्योंकि सुबह का वक्त होने वाला था। अब चोर ने आह देखा ना ताव, वो शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया और उस सोने के घंटे को उतारने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा, वैसे ही शिवजी प्रसन्न होकर के उसके सामने प्रकट हो गए। बोले कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग तू मुझसे क्या मांगता है। अब चोर घबरा गया कि अचानक इस मंदिर का मालिक कहाँ से प्रकट हो गया, वो भागने की कोशिश करने लगा। शिवजी ने उनका हाथ पकड़ लिया चोर का, बोले मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, मांगो तुम मुझसे क्या मांगते हो। चोर को थोड़ी हिम्मत आई, उसने कहा मैं मांगूंगा बाद में, पहले ये तो बताइए आप हैं कौन। उन्होंने कहा मैं भगवान शिव हूँ और तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। चोर ने कहा प्रभु मैं मांगूंगा बाद में, पहले आप ये बताओ कि आप मुझसे खुश क्यों हो इतने, मैं तो यहाँ चोरी के इरादे से आया था, जो आपके ऊपर ये सोने का घंटा लटक रहा है वो उतारने के लिए आया हुआ था। तो शिव जी ने, परमात्मा ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा देख आज तक जो भी मेरे मंदिर में आया ना, किसी ने बेलपत्र चढ़ाया, किसी ने धतूरा चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया, आज तक कोई भी ऐसा भक्त नहीं आया जो मेरे ही ऊपर चढ़ गया हो, और चूंकि तुम मेरे ऊपर चढ़ गया इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांग मुझसे क्या मांगता है। तो मित्रों, बात समर्पणता की है। जब हम परम सद्गुरु पे अर्पित होते हैं, जब हम अपने मन बुद्धि को सचमुच उससे लगाने का प्रयास करते हैं, उसकी ओर चलने की कोशिश करते हैं समर्पण भाव से, तो उनका आशीष, उनकी कृपा स्वतः ही हमें प्राप्त होने लगती है। तो आइए इसी समर्पण भाव से आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
शुक्रिया।
चोर के लिए क्या कहें, मतलब एक कथा है एक जो समर्पण भाव को दिखाता है।
समर्पण भाव सचमुच बहुत बड़ा है, और इसी को गुरु परंपरा में भी कायम रखा गया। सभी लोग अपने को समर्पित करने लगे, और शिष्य पूरी रूप से जो समर्पित हो गए, गुरु ने अपना सर्वस्व उसको प्रदान कर दिया। यही चीज आगे चलकर कहीं कहीं विकृतियों में बदल गई कि कुछ नारी कन्याएं भी समर्पित होने लगी गुरु के ऊपर, और गुरुओं ने फिर गलत कर दिया जिससे बहुत बदनामी हुई, धर्म बदनाम हुए, गुरु बदनाम हुए, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची। लेकिन सच्ची समर्पणता गुरु के आगे तो इसलिए थी कि मनुष्य को गुरु से सब कुछ मिल सके, पर सच्ची समर्पणता परमपिता के समक्ष है, उस परम सद्गुरु के समक्ष होनी चाहिए ताकि वो अपना सब कुछ दे सके। लेकिन इस समर्पणता का मीनिंग बड़ा गुह्य है। मेरा कुछ भी नहीं, बुद्धि का अहम, मन के व्यर्थ विचार, धन का अभिमान, शक्ति का अभिमान, सब कुछ परमात्मा के समक्ष अर्पित, बिल्कुल अपने को एक कोरा कागज बना दिया जाए कि लो लिख दो इस पर मेरे भाग्य की रेखाएं खींच दो, एक सुंदर भाग्य लिख दो मेरा इस पर, तो ऐसी संपूर्ण समर्पणता भगवान के परम सदगुरु के समक्ष होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, सदगुरु मान लो उपदेश दे रहे हैं, परम सदगुरु परम पिता, कि तुम आत्मा हो, ये देह नहीं हो, और कोई मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा, देह कैसे नहीं है, देह ही तो सब कुछ है, हमारे पास बहुत बुद्धि है, मेरे पास ये है, सुख तो इन्हीं में है, आप कैसे कह रहे हो इन विकारों को छोड़ दो, ये विकार ही तो सुख दे रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि अपनी बुद्धि को समर्पित नहीं किया, तो उसकी बुद्धि में परम सदगुरु सदविवेक भी भला कैसे भरेंगे। जिन्होंने अपनी बुद्धि को पूरी तरह समर्पित कर दिया, अपने मैंपन को जिन्होंने समर्पित कर दिया, उनको ईश्वरीय शक्तियां मिलने लगी, अनेक योग्यताएं देन, जिसे परमात्म देन कहते हैं, उनको मिलने लगी। जिन्होंने बुद्धि को समर्पित कर दिया, उनको दिव्य बुद्धि सदविवेक एक डिवाइन विजडम प्राप्त होने लगी। तो इसलिए परम महत्व है परम सदगुरु के सामने अपने को समर्पित कर देने का, ताकि वो अपना सब कुछ हम पे समर्पित कर दे। लेकिन हम इधर से कहेंगे, हे परम सदगुरु मेरा सब कुछ तुमको समर्पित, और उधर से उसकी ओर से आवाज आएगी, बच्चे मेरा सब कुछ तुमको समर्पित, मेरी सारी शक्तियां तुमको समर्पित, मेरे वरदान तुमको समर्पित, मेरा स्वर्ग जिसको मैं रचने आया हूँ उसका राजभाग्य भी तुमको समर्पित, मेरी संपूर्ण सुख शांति आनंद प्यार भी तुमको समर्पित।
कई लोग इसे मोटे तौर पे ये भी समझ सकते हैं ब्राता जी, कि समर्पण का भाव क्या, हमने सब कुछ दे दिया तो किसको दे दें, ये भाव थोड़ा सा स्पष्ट करें कि हमने समर्पित किया तो अपने पास ही रखें, कहीं दे दें, या किस प्रकार से फिर अपने जीवन को चलाएं।
ये सचमुच समर्पणता बहुत ही गुह्य विषय है। मान लो किसी के पास बहुत सारा धन है और उसने अपने परम सदगुरु के आगे कहा, मेरा सब धन तुमको अर्पित। अभी परमात्मा ने जो परम सदगुरु है उसके धन को स्वीकार कर लिया, लेकिन धन परमात्मा को क्या करना, वो तो मालिक है अथाह धन संपदा का, और उनको इन कागजों के नोट से या सोने चांदी से क्या लेना देना। अब वो ये कहेंगे, अब ये मेरा हो गया सब कुछ, लेकिन मैं तुम्हें वापिस पुनः दे रहा हूँ, ट्रस्टी बनकर इसको संभालो। अब उसके मन से ये भाव निकल जाए, ये मेरी संपदा है, ये मेरा मकान है, ये सोना चांदी हीरे सब मेरे हैं, या ये परिवार मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, सब उसके थे, उसने मुझे पुनः यूज करने के लिए दिए, मैं ट्रस्टी हूँ, तो ये याद रखते हुए कि ये प्रभु देन है, प्रभु प्रसाद है, हम उसको उसकी आज्ञा अनुसार यूज करें, ये है समर्पणता। समर्पणता एक बहुत गहरा सब्जेक्ट है
जी,
मन की समर्पणता, संबंधों की समर्पणता, इवन अपने कर्मों की समर्पणता, बुद्धि की समर्पणता, और जो मन के बोझ और चिंताएं और टेंशन है उनकी भी फाइनली समर्पणता। तो जैसे जैसे हमारी समर्पणता बढ़ती जाएगी, हम बहुत लाइट होते जाएंगे और हमें परमात्म देन का अनुभव होता जाएगा, उसके वरदान हमें मिल रहे हैं, क्योंकि हम खाली हो गए, सब कुछ दे दिया, हम खाली हो गए, अब वारी है उसकी कि वो हमें सब कुछ देगा।
बिल्कुल, मतलब यहाँ से पहले जो भी कचरा वचरा हमने भरा हुआ है वो सब हमें उन्हें अर्पित करना पड़ेगा। चलिए और कुछ दे ना दे, लेकिन ये बोझ तनाव तो हम दे ही सकते हैं।
इसीलिए शिव के मंदिर पर ये भांग धतूरा ये ऐसी वैसी गंदगी चीजें चढ़ाई जाती हैं, यानी परमात्मा को अपनी बुराई भी समर्पित कर दो। ये जो तुम्हारे मनोविकार हैं, जो तुम्हारे दुख दर्द हैं, ये जो तुम्हारे बेकार के संकल्प हैं, जो तुम्हें कष्ट पहुंचा रहे, ये सब उस पे अर्पित कर दो, तो उससे डिवाइन चीजें तुम्हें मिल जाएंगी।
इसीलिए शायद वो ये भी दिखाया गया कि हलाहल उन्होंने पी लिया, सबने अपने हलाहल शायद दे दिए थे, किसी और ने तो नहीं पिया, लेकिन शायद परम सदगुरु परमात्मा ने वो हलाहल पी लिया।
क्योंकि बाकी सब गुरु तो धनमाल मांगेंगे, भाई ये दे दो वो दे दो, कम से कम फूल फल तो दो, लेकिन वो मांगता है अंदर की गंदगी, मनोविकार, दुख दर्द
जी।
तो यही हलाहल है, यही विष है, ये देने से अमृत हमें रिटर्न
प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जब हम ये कहते हैं कि भाई परमात्मा को सब कुछ दे दो, तो वो कहते हैं हमने दे दिया लेकिन वो फिर हमारे पास वापस आ गया, हमने बोझ तो दे दिया लेकिन वो बोझ अब भी महसूस हो रहा है, तनाव भी दे दिया लेकिन अब भी तनाव महसूस हो रहा है। तो ये कैसे प्रॉपरली दें कि उनके पास पहुंच जाए और वापस हमारे पास ना आए, इसे थोड़ा सा स्पष्ट करें।
ये जो मैंपन और मेरापन गहरी जड़े जमा चुका है मनुष्य के अंदर
जी,
जब पहले इसको दें हम, ये मेरे हैं, इसको बार बार का अभ्यास करें, मेरे नहीं तेरे, मैं नहीं तू, तो एक अच्छी साधना करनी पड़ेगी। तो जब ये मैंपन समाप्त हो जाएगा तब ये स्थिति आएगी कि बोझ दे दिए बस तेरे हुए, लेकिन फिर अगर वो अपने पास आते हुए महसूस होते हैं फिर दो कि हमने तो दे दिए है ना, याद करो कि हमने दे दिए हैं, वो जिम्मेदार है, वो संभालेगा, अब मुझ पर इनका बोझ नहीं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये निश्चिंत स्थिति, ये साक्षी भाव, ये डबल लाइट की स्थिति आती जाएगी।
मतलब वो हम देते हैं तो वो तो ले लेते हैं, लेकिन शायद वो गठरी बार बार हमें खींच लेते हैं
क्योंकि मैंपन और मेरापन गहरी जड़ें जमा चुका है।
बिल्कुल। तो भ्राता जी, ये विशेष करके ये जो प्रश्न है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास जो भी बोझ, गंदगी या पास्ट का जो भी हमारे पास भरा हुआ है वो सब हम देते हैं, लेकिन वो बार बार रिटर्न आता है। तो और क्या क्या तरीके हो सकते हैं? एक तो हमने बोला उन्हें कि ले लो, उन्होंने ले लिया लेकिन शायद हमने खींच लिया, और क्या कुछ तरीके हो सकते हैं जो सहज रूप से सब कुछ उनके पास ही चला जाए?
बहुत सिंपल एक विधि है जो बाबा के समय से, जब से बाबा यहाँ थे, बाबा ने सिखाई थी, लेकिन ये बात सच्चे मन से करने की है कि जो कुछ भी है रोज रात को एक पत्र के रूप में लिखना प्रारंभ करें। खुदा दोस्त के नाम पत्र, अपने परम सदगुरु के नाम पत्र, अपने परम प्रियतम के नाम पत्र, जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं, जो कुछ भी उन्हें देना चाहते हैं, सच्चे मन से उनको अर्पित कर दें, उनको उनके आगे रख दें। कभी कभी ऐसा होता है भोग लगाया जाता है परम सदगुरु को, उसके भोग में वो कागज रख दें कि ये भी तुमको भोग लगा देते हैं, मन के बोझ हो, चाहे कोई मनोविकार तंग कर रहा हो, चाहे कोई चिंता लगी हुई हो, ये देने से मन हल्का होगा। अगर आपका मन हल्का हो गया तो समझ लो कि गया। और मान लो आपका मन फिर भारी है, तो आपके अंदर मैंपन और मेरापन है, तो फिर लिखो, सच्चे मन से देने लगो, भले ही आपके पास कुछ नहीं है, लिख कर फिर उसको जला दो, मैंने तुमको अर्पित कर दिया। थोड़े दिन ये प्रैक्टिस कर लेने से मन उस बोझ से मुक्त होने लगेगा।
बिल्कुल, मतलब ये भी एक सुंदर तरीका हो सकता है। चलिए, इस तरीके को भी सभी अपनाएं और परम सदगुरु जो हमारी मदद करने को आए हैं उनकी मदद का भी अनुभव करें। प्रथा जी, एक प्रश्न हमारे पास, जो सदगुरु के संबंध की बात चल रही है, तो एक प्रश्न आया था कि सदगुरु बिगड़ी को बनाते हैं, हमारी बिगड़ी को भी क्या वो बनाएंगे और इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये बहुत आम मान्यता है कि जो हमारे सदगुरु होते हैं, गुरु होते हैं, हमारी कोई भी बात बिगड़ी हो बना देते हैं।
पहली चीज तो यही लोगों की स्थूल दृष्टि रही है कि भाई काम बिगड़ गया, बिजनेस बिगड़ गया, बच्चे बिगड़ गए, और कहीं उलझने आ गई, उसको ठीक कर दें परम सदगुरु, ये काम भी उनकी ओर से होता है। परंतु पहली बात ये थी कि हमारा जीवन ही बिगड़ गया, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ गई, हमारी प्योरिटी नष्ट हो गई, मनोविकारों ने हमारे चारों ओर घेराव डाल लिया है, ये बिगड़ी। पहले परमात्मा इस बिगड़ी को बनाते हैं, यानी हमें, यानी मनुष्य आत्माओं को, अपने बच्चों को ठीक करते हैं, सुधारते हैं। और जब हम में सुधार आ जाता है तो हम में ही वो पावर आ जाती है कि हम अपनी बिगड़ी को बना सकें। और अगर हम में वो पावर नहीं आई तो हम योगयुक्त होकर परम सदगुरु की मदद प्राप्त करके अपनी बिगड़ी को बना लेते हैं।
मतलब यहाँ भी हमें योग करना होगा। हाँ, तब शायद उनकी
हमें
मदद
बहुत
मिलेगी।
अच्छी साधनाएं करनी होंगी, क्योंकि जैसे मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि कोई मनुष्य की बिगड़ी को लेकर वो अपने गुरु के पास जाता है, गुरु अपनी शक्ति से उसकी बात ठीक कर देता है, इट्स ओके, लेकिन कल फिर उसकी बिगड़ जाती है, फिर वो गुरु के पास जाता है, फिर बिगड़ जाती है, फिर गुरु के पास जाता है, तो एक तरह से ये कमजोरी होगी और गुरु भी कहाँ तक मदद करेगा, कहेगा तुम रोज ही बिगाड़ के आ जाते हो, बस पूरा हो गया आप काम। परम सदगुरु हमें ऐसा कर देता है, शक्तिशाली बन जाओ, कि एक तो तुम्हारी बिगड़े ही नहीं
जी।
और अगर मान लो तुम्हारा भाग्य बिगड़ गया तो उसको तुम ठीक करना जानते हो, वो हमें ऐसा आर्टिस्ट बना देता है, पेंटर, तुम्हारे चित्र में यदि कहीं गड़बड़ाहट आ जाए तो तुम मेरे पास दौड़े ना आओ, खुद ठीक कर लो। तो ये है उस परम सदगुरु का,
ये तो सबसे अच्छी बात है भ्राता जी, कि वो योग्य बना दें। जैसे कहीं कहावत मैंने पढ़ा था कि किसी भिखारी को भिक्षा दे देना ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसे कमाई कैसे करना है ये सिखा देना, ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये वाली बात कि परमात्मा बिगाड़ बिगाड़ के हम बार बार जाते रहें और वो ठीक करते रहें, उसके बनिस्पत वो हमें ही ठीक कर देते हैं ताकि हम बिगड़ी को ठीक कर लें। और शायद इसीलिए कहा गया व्रता जी कि भाग्य लिखने की कलम भी शायद वो हमारे हाथ में दे देते हैं कि लिखो तुम जो लिखना चाहते हो।
इसलिए मंदिरों में आप जाएंगे तो शिव शक्तियों के मंदिरों में जाएंगे, गणेश जी के मंदिर में जाएंगे, हनुमान के मंदिर में जाएंगे, सबकी महिमा में यह है तुम भाग्य विधाता हो। तो वो अपने बच्चों को ही इतनी पावर दे देता है, उन्हें एम्पावर कर देता है, ऑथराइज कर देता है कि तुम भाग्य लिखो, अपना ही नहीं दूसरों का भी लिखो।
जी 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 प्रथा जी, अगला जो प्रश्न है वो है कि गुरु का निंदक ठौर ना पाए। ऐसा कहा जाता है कि यदि हमने गुरु की निंदा की तो हमें कहीं भी तीनों लोकों में ठिकाना नहीं मिलेगा। इसीलिए कई लोग डरते हैं कि हमने एक गुरु किया हुआ है, अब यदि हम किसी दूसरे के पास जाएंगे, ज्ञान सुनेंगे, बैठेंगे तो हमारी गुरु की निंदा हो जाएगी और हमें कहीं ठौर नहीं मिलेगा। तो इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करें।
वास्तव में इस बात से डरने की बात नहीं है, अनेक लोग अनेक गुरु भी करते हैं। भाई एक गुरु से हमें एक तरह की प्राप्ति हुई, दूसरे गुरु से दूसरी तरह की प्राप्ति, इसमें कुछ गुरु की निंदा या ग्लानी होने जैसी कोई बात नहीं, इसमें डरने की बात नहीं। लेकिन जब भगवान का मामला सामने आ गया हो कि वो परम सद्गुरु बनने को तैयार है और वो उसी रूप में इस धरा पर आ गया है तो उसको ही अपना परम सद्गुरु के रूप में अपना लेना चाहिए। रही बात निंदा की, निंदा तो ये है कि हम किसी अच्छे व्यक्ति के गुरु के शिष्य हों और हम बुरे काम करते रहें। मान लो कोई अच्छे गुरु का शिष्य है और शराब पीता है तो लोग कहेंगे देखा उसके गुरु ने उसे ये भी नहीं सिखाया। तो ये है गुरु की ग्लानी। और परम सद्गुरु की ग्लानी ये है कि उसने पवित्रता का मार्ग दिखाया, उसने प्योरिफिकेशन का मार्ग दिखाया तो हम उस पर चलते रहें। अगर हम उसको तोड़ते हैं तो ये जैसे सूक्ष्म रूप में सद्गुरु की निंदा हो जाती है और ऐसे में थोड़ न मिलना माना उन आत्माओं की सदगति नहीं होती।
मतलब ये वाली दोनों प्रकार से आपने स्पष्ट कर दिया भरत जी कि वहां से भी आया जा सकता है और परम सद्गुरु से लिया जा सकता है और परम सद्गुरु की यदि आज्ञा का उल्लंघन हो तो शायद इस प्रकार की तकलीफ हो सकती है। कई लोग ये भी कहते हैं भरत जी कि क्या हम वहां भी जाएं यहां भी आएं, या तो ये भी संभव नहीं है क्या कि हम उस गुरु के साथ भी बने रहें और यहाँ पे भी जो परम सद्गुरु हमें सिखा रहे हैं वो भी हम सीखते रहें।
अगर किसी को अपने गुरु में बहुत अच्छी भावना है और उनका गुरु सचमुच ग्रेट है, उनसे उनको बहुत कुछ सुख शांति आनंद प्रेम मिल रहा है तो उनको छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी भगवान की संतान है और वो भी अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं। अब बात यही है कि उस गुरु के पास भगवान मिलन के लिए जाते थे और जब भगवान मिलने आ गया हो तो उसे मिलना तो चाहिए ना। फिर गुरु के पास गए थे प्रभु मिलन के लिए और प्रभु मिलन होने लगा और फिर कोई कहे मैं तो गुरु के पास ही रहूंगा प्रभु मिलन नहीं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तो भले ही गुरु को सम्मान दो, उनकी आज्ञाओं पे चलो, उनसे अपना नाता रखो, लेकिन परम सद्गुरु की दिखाई गई राह पर चलने से बहुत महान बन जाएंगे और सर्वश्रेष्ठ गति जिसको मुक्ति या जीवन मुक्ति कहते हैं उसके अधिकारी बनेंगे।
बिल्कुल, मतलब महत्ता इस चीज को भी परम सद्गुरु को दिया जाए। और कई लोग ये बात भी उठाते हैं भ्राता जी कि हमारे गुरु जो ज्ञान देते हैं वही ज्ञान तो यहाँ पे भी दिया जा रहा है, वो भी हमें अच्छाई की ओर ले चलते हैं, यहाँ पे भी अच्छाई का मार्ग दिया जा रहा है। तो कई लोग ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि जो ज्ञान वहाँ मिल रहा है वही तो यहाँ मिल रहा है, फिर सब कुछ छोड़ने की क्या जरूरत है।
बात केवल ज्ञान मिलने की नहीं है। देखिए ज्ञान को अगर गहराई से कोई अध्ययन करेगा तो उनको पता चलेगा कि वहाँ जो ज्ञान दिया जा रहा था वो ज्ञान जहाँ समाप्त हो गया वहाँ से परम सद्गुरु का ज्ञान प्रारंभ होता है। मोटे रूप से लोग देखते हैं कि वो भी कह रहे हैं विकारों को छोड़ो, अच्छे कर्म करो, यहाँ भी वही बात कही जा रही। ये तो बाह्य स्वरूप है केवल। सूक्ष्म ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान जो स्वयं भगवान देते हैं, देखिए भगवान जब गाइड करेगा तो वो उनकी गाइडेंस वो नहीं होगी जो मनुष्य कर रहे हैं, उसे बहुत सुपर क्वालिटी की हो जाएगी। इसलिए वो बात नहीं है, ज्ञान की बहुत अच्छी तरह स्टडी करें तो पता चलेगा कि बहुत ये ज्ञान परम सद्गुरु के द्वारा मिल रहा है। उसको अपनाने से वो ज्ञान भी जो वहां मिल रहा था उसको जीवन में धारण करना सहज हो जाता है। बात यही होती है कि मान लो वही ज्ञान दिया भी जा रहा हो लेकिन कौन से ज्ञान को हम जीवन में अपना पा रहे हैं, किसकी आज्ञाओं पर चलकर हम जीवन को निर्विकारी बना रहे हैं और किसकी आज्ञाओं पर चलकर हम वैसे के वैसे ही हैं, सुन तो रहे हैं शराब पीना बहुत खराब है, लेकिन पीते ही जा रहे हैं, पीते हुए भी कह रहे हैं शराब पीना बड़ा खराब है। तो ये अंतर हमें स्पष्ट रूप से अनुभव करना
जी जी मतलब वो शक्ति हमें यहाँ प्राप्त होती है। और शायद ये बाहरी तौर पे ही लोग ये देखते हैं, लेकिन ज्ञान की स्टडी करने की आवश्यकता है, तब शायद ये जो बड़ा अंतर है गुरु और सद्गुरु का, शायद वो लोग समझ पाए। श्रता जी, एक अगला जो हमारे पास प्रश्न आया है वो ये है कि कहते हैं कि परमात्मा सद्गुरु के रूप में हमें सच्चा रास्ता दिखाते हैं, तो क्या अब तक हमें जो रास्ते दिखाए गए वो झूठे रास्ते थे?
विवेक पूर्ण प्रश्न है, मैं उत्तर देना चाहूंगा इसका बिल्कुल अच्छे शब्दों में। अगर आज तक दिखाए गए मार्ग अच्छे होते तो हमारे जीवन में गिरावट न होती, कलयुग का अंधकार गहरा न होता जाता, ये प्रकाश में बदल गया होता। जरूर रास्ता ठीक नहीं दिखाया गया तभी हमें मंजिल नहीं मिली, अन्यथा मंजिल मिल गई होती। किसी डॉक्टर का इलाज चल रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो ये मानना पड़ेगा कि समथिंग इज रॉन्ग, या तो मेडिसिन ठीक नहीं मिल रही है, या डायग्नोसिस ठीक नहीं हुआ है, या डॉक्टर को समझ में नहीं आया है। हमारी गिरावट होती जा रही, संसार दिनों दिन पतन की ओर जा रहा है, मानसिक स्तर लोगों का बिगड़ता जा रहा है, मनोविकार हावी होते जा रहे हैं, दुख अशांति अपना प्रकोप दिखाती जा रही है, तो जरूर कहीं ना कहीं मार्ग गड़बड़ाया था। इसीलिए परम सद्गुरु ने आकर मार्ग दिखाया, और वही मार्ग सत्य है जिसने करोड़ों का जीवन बदल दिया, जिसने करोड़ों के जीवन में उत्थान ला दिया, उनके जीवन को सुख शांति से भरपूर कर दिया, प्योरिफाई कर दिया, आत्मा को शुद्धिकरण की ओर ले चला। तो इसलिए प्रैक्टिकल अनुभवों से ये जान सकते हैं कि परम सद्गुरु के द्वारा दिखाया गया मार्ग ही संपूर्ण सत्य मार्ग है। ये कहने से और तर्कों से समझ में नहीं आएगा, जिस मार्ग पर चलकर आप मंजिल तक पहुंच गए वही सत्य है ना। ट्रेन आपने पकड़ी थी दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली पहुंच गए तो ट्रेन ठीक थी ना, और पहुंच गए हो मुंबई तो कहेंगे ट्रेन ठीक नहीं पकड़ी। तो जिन मार्गों पर हम चलते रहे, चलते चलते बल्कि राह भटक गए, और ईश्वरीय मार्ग पे चलने से हमें मंजिल मिलती है, यही उसके सत्य होने का प्रैक्टिकल प्रूफ है।
तो क्या कहेंगे भ्राता जी, मैं भी फिर से सीधा प्रश्न कर रहा हूँ कि क्या अब सभी रास्ते छोड़ दिए जाएं और एक रास्ते पे चला जाए?
देखिए, अगर किसी को मंजिल पर पहुंचना है तो उन रास्तों का त्याग करना ही पड़ेगा जिन पर चलकर मंजिल से दूर हो गए, सीधा उत्तर है। अब जब भगवान खुद मार्ग दिखा रहा है तो उसी के दिखाए मार्ग पे चलना ही कल्याणकारी है।
तो ये सत्य मार्ग है क्या भ्राता जी, और कैसे माने? क्योंकि अब ये कहा गया कि हम जिस रास्ते पे चलते रहे हैं, बहुत लंबी दूरी तक शायद हम निकल गए हों किसी के साथ चलते चलते, अब ये कहा जाए कि वो रास्ता ठीक नहीं है, अब इस रास्ते पे चलें, तो फिर से इस रास्ते को ठोक बजा के देखना चाहेगा। हाँ। कि भाई ये रास्ता कैसे सत्य है और ये सचमुच क्या हमें मंजिल तक ले जाएगा?
ये सत्य है कि जो मनुष्य धोखा खा चुका है, जो मनुष्य दूर निकल चुका है, वो इस रास्ते की परख अवश्य करेगा, और परखने के लिए उसे 6-8 मास इस मार्ग पे अवश्य चलना चाहिए, उसके लिए ज्ञान लेना चाहिए और राज्यों का अभ्यास करके देखना चाहिए। यदि उसको आत्मसंतुष्टि होने लगे, यदि उसको लगे इस मार्ग पे चलने से हमारा चित्त शांत हो रहा है, हम मनोविकारों से छूटते जा रहे हैं, प्रभु मिलन के सुंदर अनुभव प्रारंभ हो गए हैं, तो यही बात उसे कन्विंस करेगी इस मार्ग पे चलने के लिए।
चलिए, बहुत सुंदर भ्राता जी आपने प्रकाश दिया है, और लगता है कि इस श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए हमें सचमुच बहुत सुंदर ज्ञान की भी आवश्यकता है, और इतने सारे अनुभव जो आप रख रहे हैं उसके माध्यम से भी हमें ये संबल प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे दर्शक भी इस पे विचार करेंगे। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जो बात भ्राता जी कह रहे थे, हम लोग कई बार इस बात पे विचार कर चुके हैं कि यदि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी के को लेकर के, कि डॉक्टर साहब ये बीमारी है, और वो हमें दवा देते हैं, हमने 2-4 दिन लिया और ठीक नहीं होते, तो निश्चित रूप से हमें विचार आता है कि शायद दवाई ठीक नहीं है, चेंज करने की ज़रूरत है। हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तीसरे के पास जाते हैं, चौथे के पास जाते हैं, तब तक जाते रहते हैं जब तक कि बीमारी ठीक नहीं हो जाती। और अब तक यही स्थिति हमारी रही है कि लगातार हम शांति की तलाश करते रहे हैं, सुख की तलाश करते रहे हैं, सत्य की तलाश करते रहे हैं, लेकिन शायद अंदर में जो तृप्ति होनी चाहिए कि हाँ, मैंने सत्य को पा लिया, मैंने उस शांति उस सुकून को पा लिया, या मैंने सृष्टि के रहस्य को समझ लिया, शायद ये बात अब तक हमारे दिल में नहीं आई थी। इसीलिए एक सत्य मार्ग जो अब परम सद्गुरु हमें दिखा रहे हैं, जैसे भ्राता जी लगातार कह रहे हैं, लाखों लोग जिस मार्ग पे चल के परम सत्य का अनुभव कर रहे हैं और साथ ही अपने जीवन में सुकून और शांति का अनुभव कर रहे हैं, न केवल इतना लेकिन उस सर्वोच्च पद तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी अभिलाषा मानव मन में हमेशा से थी और जो मानव जीवन का लक्ष्य ही है कि हम मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करें, उस परम सत्य तक पहुंचकर संपूर्ण सत्य को जान लें। इस बात की जो सदियों से हमारी कामना थी शायद इस मार्ग पे चल के संभव होगी, लेकिन बात वही है कि हम एक बार प्रयास करें, हिम्मत का एक कदम बढ़ाएं, क्योंकि जब हम खुद करेंगे तभी इस चीज का शायद अनुभव कर पाएंगे। तो परम सद्गुरु के साथ और कैसे नजदीक पहुंचें, इस विषय पे हमारी आगे भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।